ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद्भागवतम महापुराण स्कंद 6 अध्याय 5 और आज का श्लोक संख्या है 43। आप मेरे पीछे दोहराइए। तंतु कृंतनायनस्त्वामा अभद्रम अचरा पुना। तंतु कृंतनायनस्त्वामा अभद्रम अचर पुना। तस्माल्लोकेषु ते मूढा न भवेत् भ्रमता पदम्। तस्माल्लोकेषु ते मूढा न भवेत् भ्रमता पदम्। तंतु कृंतना, हे शैतान, जिसने निर्दयता पूर्वक मेरे पुत्रों को मुझसे विलग कर दिया है। यद जो न हमको त्वाम तोम अभद्रम अशुभ वस्तु अचरा किया है पुनः फिर से तस्मात इसलिए लोकेशु ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी लोकों में ते तुम्हारा मूढ़ रे धूर्त जो यही नहीं जानता कि कैसे व्यवहार करना चाहिए ना नहीं भवेत् हो सकता है भ्रमता भ्रमण करने वाले पदम धाम घर। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। तुमने मेरे पुत्रों को मुझसे एक बार विलग कराया और अब पुनः तुमने वही अशुभ कार्य किया है, अतः तुम धूर्त हो जो यह नहीं जानता कि अन्यों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। भले ही तुम ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते रहते हो, किंतु मैं शाप देता हूं कि तुम्हारा कहीं भी निवास स्थान ना हो। तात्पर्य, चूंकि प्रजापति ऐसे ग्रह मेदी थे जो गृहस्थ जीवन में बने रहना चाहते थे, अतः उन्होंने सोचा कि यदि नारद एक स्थान में न रहने पाए अपितु सारे जगत में भ्रमण करते रहे तो उसके लिए ये बड़ा दंड होगा। किंतु वस्तुतः प्रचारक के लिए ऐसा दंड वरदान बन जाता है। प्रचारक परिव्रज का आचार्य कहलाता है, अर्थात ऐसा आचार्य या शिक्षक जो मानव समाज के लाभ हेतु सदैव विचरण करता रहता है। प्रजापति दक्ष ने यह कहते हुए नारद मुनि को शाप दिया कि यद्यपि उन्हें सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने की सुविधा है, किंतु वे किसी एक स्थान में कभी ठहर नहीं सकेंगे। नारद मुनि की परंपरा में मैं भी शापित हुआ हूं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, नारद मुनि की परंपरा में मैं भी शापित हुआ हूं। यद्यपि ऐसे अनेक केंद्र हैं जो मेरे रहने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकते हैं, किंतु मैं कहीं भी ठहर नहीं पाता, क्योंकि मैं अपने तरुण शिष्यों के माता पिताओं द्वारा शापित हूं। जब से कृष्णा भावनामृत आंदोलन चालू किया गया है, मैंने वर्ष में 2-3 बार सारे संसार की यात्रा की है, और जहां जहां मैं जाता हूं वहां वहां मुझे आरामदेह स्थान ठहरने को दिए जाते हैं, किंतु मैं कहीं भी 3 दिन या 1 सप्ताह से अधिक रुक नहीं पाता हूं। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं कहीं भी एक स्थान पर अधिक रुक नहीं पाता हूं। मैं अपने शिष्यों के माता पिताओं के इस शाप की परवाह नहीं करता। हरि बोल। किंतु अब यह आवश्यक है कि मैं किसी एक स्थान पर अन्य कार्य कौन सा है, श्रीमद् भागवत के इस अनुवाद को पूरा करने के लिए ठहरूं। यदि मेरे तरुण शिष्य, विशेष रूप से वे जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, सारे जगत में भ्रमण करने का कार्यभार ले सकें, तो मेरे लिए यह संभव हो सकता है कि मैं माता पिताओं का यह शाप इन तरुण प्रचारकों पर स्थानांतरित कर सकूं। तब मैं सुविधापूर्वक एक स्थान पर अनुवाद का कार्य करने के लिए बैठ सकूंगा। ओम ज्ञान तिम्रांधसे ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत्पत्कमलम श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष श्रीरूपम साग्र जातम सैगण रघुनाथुतम तम सजीव सावदैतम सावदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्रीराधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखानविताक्ष। नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्तशक्तिकम। नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय निर्गौरतुषे नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांसि राधा कांत नमोस्तु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछा कल्पतरु भिक्षा कृपा सिंधु भेवचा पदितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तंतु कृंतनायनस्त्वम अभद्रम अचरः पुनः तस्मा लोकेषु ते मूढ़ा न भवेद् भ्रमतः पदम। तंतु कृतना, हे शैतान, तो यहाँ हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए हैं और अब नारद मुनि को शाप दे रहे हैं। और क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं, हे शैतान, नारद मुनि को शैतान बोला, उनको शैतान कहकर के संबोधित किया है। क्योंकि दक्ष प्रजापति रजोगुण में थे, भगवान की सेवा में लगे थे, जनसंख्या को बढ़ाना चाहते थे, संतान को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में लगे थे। तो प्रशासनिक कार्य तभी संभव हो पाते हैं जब रजोगुण में स्थित हो, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, उसके लिए रजोगुण आवश्यक है। तो रजोगुण में क्रोध आ जाता है, आता है कि नहीं? एक श्लोक है ना भगवद गीता का बड़ा प्रमुख, क्या है, 3.37, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्भवा। ये काम और क्रोध किससे पैदा होता है? रजोगुण से पैदा होता है। तो उन्होंने क्रोध में आकर के उनको शाप दिया, नारद मुनि को, जो शुद्ध सतोगुण में रहते हैं। शुद्ध सतोगुण में रहने वाले नारद मुनि जो भगवान के नित्य संगी हैं, करुणा में हैं, प्रेम में हैं, प्रेम के अवतार हैं, उनको क्या संबोधित किया? हे शैतान। तो इस तरीके से हमें सोचने से पहले कई दफ़ा, मतलब बोलने से पहले कई दफ़ा सोच लेना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, कौन से शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, कौन से शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए, तो ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए और नारद को उन्होंने जो है शाप दिया। क्यों क्रोध में आ गए? क्योंकि उन्होंने, नारद जी ने उनके पुत्रों को एक अलग मार्ग दिखा दिया था, वैराग्य का मार्ग दिखा दिया था, इसलिए उनको क्रोध आ गया। पहले 10,000 पुत्र, फिर 1,000 पुत्र, सबको नारद मुनि ने भगवान के पास जाने का मार्ग, भगवत मार्ग दिखा दिया और उन्होंने उनको सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो दक्ष प्रजापति तो क्रोध आना स्वाभाविक था, वो अपनी जगह बिल्कुल गलत भी नहीं थे, अगर देखा जाए तो अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं थे, उनका सोचना ठीक था, लेकिन नारद मुनि का सोचना उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ था, कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ था, जिस बात को नारद मुनि प्रजापति नहीं समझ पा रहे थे। जब कोई प्रिय वस्तु हमारे हाथ से चली जाती है तो हमें क्रोध आ जाता, जब कोई हमको ठेस पहुंचाता है, हमारा नुकसान करता है, तो हमको क्रोध आ जाता है। लेकिन जब कोई नुकसान अपने आप हो जाता है तब क्या करते हैं हम? तब हम शोक करते हैं, फिर क्रोध नहीं करते, फिर शोक करते हैं, ये हो गया, ऐसा हो गया। कभी कभार दांतों के बीच में जीवा आ जाती है, कट जाती है, दांतों के बीच में जीवा आके कट जाती है, दांत भी मेरे हैं, जीवा भी मेरी है, दांतों ने जीवा को काट दिया, अब दोष दूं तो दूं किसको? किसी को कुछ नहीं कह सकता, मेरे दांत मेरी जीव काट दिया। लेकिन जब कोई दूसरा हमको पीड़ा देता है तब हमें क्रोध आ जाता है, हम उस व्यक्ति में दोष देखने लगते हैं कि इसने मेरे को पीड़ा पहुंचाई, इसके कारण से ऐसा हुआ। यही दृष्टि जो है, दृष्टिकोण दक्ष प्रजापति का भी था कि नारद मुनि के कारण मेरे को ये सब कष्ट मिल रहा है, ये पीड़ा मिल रही है। हम लोग भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी अगर एक श्लोक को भी हम हृदयस्थ कर लें, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता गाई है और ब्रह्मा जी की ब्रह्म संहिता का जो पहला श्लोक है, ईश्वरः परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, बोलने में तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और कंठस्थ भी किया हुआ है, लेकिन अगर इसी श्लोक को हृदयस्थ कर लें, कंठस्थ करना अलग बात है, किसी भी श्लोक को अच्छा है कंठस्थ कर लेना, लेकिन उस श्लोक को अगर हम हृदयस्थ कर लें, अगर इसी श्लोक को ब्रह्मा जी के द्वारा अपने पिताजी के द्वारा गाए हुए इस गीत को दक्ष प्रजापति हृदयस्थ कर लेते, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, अगर इतना विचार पूर्ण रूप से मन में आ जाता तो फिर वो नारद मुनि के ऊपर शायद ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते। पुत्र चाहे 10,000 हो, 11,000 हो, चाहे एक पुत्र हो, पुत्र का अगर वियोग की पीड़ा होती है तो उतनी ही होती है, संख्या से अंतर नहीं पड़ता। धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों का वियोग हुआ, महाराज चित्रकेतु को एक पुत्र का वियोग हो, और एक पुत्र के वियोग ने उसको रुला दिया, एक पुत्र का वियोग, लाखों पत्नियां होते हुए, 1 करोड़ पत्नियां होते हुए पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अंगिरा मुनि आए, उसकी स्थिति को देखा, उसके विलाप को देखा, उसकी दशा को देखा और उसको वर दे दिया कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उससे तुम्हें हर्ष भी होगा और शोक भी होगा। और जब वो उसका पुत्र साथ छोड़ गया और वो बहुत विलाप करने लगा, उसकी रानी भी विलाप करने लगी, शोक में डूब गए, क्रोध करें तो किसके ऊपर करें? अपने ही दांतों ने अपने ही जीवा को काट डाला था, करें तो किसके ऊपर करें? क्रोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए शोक हो रहा था, विलाप हो रहा था। और जब शोक और विलाप होता है तब किसी को ज्ञान दिया जा सकता है, भगवत ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब शोक और विलाप हो, क्रोध में भगवत ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अर्जुन को शोक हुआ, अर्जुन को विलाप हुआ, तब भगवान ने देखा अब उचित समय है इसको ज्ञान देने का। राजा चित्रकेतु को शोक हुआ, विलाप हुआ, तब अंगिरा मुनि नारद मुनि को साथ लेकर के आए और उनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पिता और पुत्र का क्या संबंध है, जीवात्मा परमात्मा का क्या संबंध है, किस तरीके से एक जीव दूसरे से मिलता है और बिछुड़ता है, बहुत सुंदर उपदेश दिया और उसके शोक को जो है वो समाप्त किया। लेकिन अगर दक्ष प्रजापति की स्थिति में खड़े होकर के देखें, उनको क्रोध क्यों आया? उनको क्रोध ऐसे आया, मान लीजिए किसी के पास एक बड़ा सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर बगीचा है और उसमें बहुत सुंदर उसने वृक्ष लगाए हैं, पौधे लगाए हैं और उसमें 10,000 पुष्प खिलने के लिए तैयार हैं। अभी खिले नहीं हैं, अभी कोमल कलियां हैं, खिलने के लिए तैयार हैं। कोई एक व्यक्ति आता है और उस 10,000 कलियों को तोड़ के ले जाता है, बगीचा ही उजाड़ दिया। उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ, कितनी मुश्किल से बगीचा लगाया था, 10,000 कलियां खिलने को तैयार थी और कौन व्यक्ति आया और इसने सब 10,000 कलियों को तोड़ दिया, फूल नहीं बनने दिया, खिलने नहीं दिया, मुझको उसकी सुगंध नहीं लेने दी। कौन सा ऐसा निष्ठुर व्यक्ति था? लेकिन वो क्रोध को पी गए, दक्ष प्रजापति उस क्रोध को पी गए। उन्होंने कहा चलो दोबारा से प्रयास करते हैं। दोबारा से उन्होंने 1,000 पौधे और लगा दिए, 1,000 कलियां और पैदा हुई, फिर वही कार्य हुआ, 1,000 कलियों को भी कोई तोड़ के ले गया। अब उनको क्रोध आना स्वाभाविक था कि नहीं था? कौन है ऐसा जिसने मेरे सारे बगीचे को तहस नहस कर दिया? यही कार्य जो है दक्ष प्रजापति का बगीचा और नारद मुनि उसकी कलियों को तोड़ने वाले, तोड़ लिया, यही कार्य किया नारद मुनि ने। तो उनको क्रोध आना भी कोई स्वाभाविक स्वाभाविक ही है दक्ष प्रजापति को। लेकिन क्योंकि नारद मुनि बहुत ही करुणा में हैं, कृपा में हैं, प्रेम के सागर हैं, दया में हैं, इसीलिए वो संसार के लोगों को कष्ट भोगते हुए देख नहीं पाते, नहीं देख पाते। स्थावरम जंगम देखे न देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव सुफुर्ति। महाप्रभु कह रहे हैं रामानंद राय जी को, महान भक्त अर्थात महाभागवत अवश्य हर चर अथवा अचर को देखता है, किंतु वह उनके बाहर के रूपों को, बाह्य रूपों को नहीं देखता। वह जहां कहीं भी देखता है उसे तुरंत भगवान का स्वरूप प्रकट होते दिखाई देता है। नारद मुनि अच्छे से जानते हैं कि ये ब्रह्मांड जिसमें 84 लाख योनियां हैं और 80 लाख योनियां ऐसी हैं जिनको नारद मुनि प्रचार नहीं कर सकते, और 4 लाख योनियां मनुष्यों की बची, 4 लाख योनियां मनुष्यों में भी बहुत से जीव ऐसे हैं जो भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं जैसे नमाम दुष्कितो न मूढ़ा प्रबंधन्ते नराधमा माया या प्रज्ञान आश्रय भावम आश्रिता। जो मूर्ख व्यक्ति है वो भगवान के पास नहीं जाएगा, जो नराधम है वो भगवान के पास नहीं जाएगा, माया या प्रज्ञाना जिसका ज्ञान माया ने हर लिया वो भगवान के पास नहीं जाएगा, आसुरी भाव भावम जो आसुरी स्वभाव के हैं वो भगवान के पास नहीं जाएंगे। तो 4 लाख योनियों में संख्या कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और जो संख्या बचती है उसमें भी अनेक प्रकार के लोगों की मति है, कई नास्तिक हैं, कई आस्तिक हैं तो वो देवताओं की शरण में हैं, कई निर्विशेषवादी है और निर्विशेषवादी में 100 प्रकार के वैरायटी है। तो भगवान की शरण में जाने वाले तो बहुत कम बचते हैं, और जब नारद मुनि को ऐसा कोई जीव दिखाई देता है जिसको वो भगवत धाम का रास्ता दिखा दें तो वो ठहर नहीं पाते, वो ठहर नहीं पाते, वो जीव को भगवान से अलग नहीं देख सकते, ये उनकी करुणा है। ये जीव अलग क्यों है, इसको मनुष्य देह मिल चुकी है, एलिजिबल है भगवान के धाम जाने के लिए। भगवान ने कहा न देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मैं अनुकूल नभस्व तेरितम पुमान भवाब्दम न तरेसा आत्मा। आपको शरीर प्राप्त हो गया आसानी से, दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई आसानी से, और नौका प्राप्त हो गई, बड़ी सुंदर नौका प्राप्त हो गई, और इसका नाविक गुरु है, और मेरे आदेश अनुकूल वायु है, इसके पश्चात भी अगर तुम इस संसार को, इस भौतिक जगत को पार करने में प्रयास नहीं करते तो अपने ही आत्मा के हत्यारे हो, भगवान ने कहा। तो नारद मुनि भी इसी बात को देख करके प्रयास करते ही रहते हैं। एक बार भगवान के सर में दर्द हुआ, काफी तेज सर में दर्द हुआ, भगवान ने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसका उपाय करो। नारद मुनि ने कहा क्या उपाय करो, मेरे को किसी भक्त की चरण रज चाहिए, उससे मेरा ये दर्द समाप्त हो सकता है। जाओ, नारद मुनि ने कहा कोई मुश्किल नहीं, कहीं ना कहीं आपके भक्त से मैं आपके लिए चरण रज लेके आ जाऊंगा। नारद मुनि घूमते रहे, लेकिन उनको कहीं से भी किसी भक्त ने भगवान के सर पे लगाने के लिए चरण रज देना स्वीकार नहीं किया। नारद मुनि निराश होकर के लौटे वापस और कहा भगवान कोई भक्त तैयार नहीं है चरण रज देने के लिए, क्योंकि उनको इसका परिणाम मालूम है कि वो शाश्वत काल तक नरक में वास करेंगे। अगर उनकी चरण रज आपके सर पे लगा दी गई तो शाश्वत काल तक वो नरक में वास करेंगे और वो तैयार नहीं। भगवान ने कहा मेरा सर दर्द कैसे ठीक होगा, तुम जाओ वृंदावन में गोपियों के पास जाओ और उनसे कहो कि भगवान ने चरण रज मंगवाई है। नारद मुनि ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। जब गोपियों को कहा तो गोपियों ने खरोच खरोच के अपने पैरों से रज निकाल करके नारद मुनि को दे दिया, खरोच खरोच के। नारद मुनि ने कहा कि आपको इसका परिणाम मालूम है, आप शाश्वत काल तक नरक में वास करोगी। उन्होंने कहा अगर एक क्षण के लिए भी भगवान के सर का दर्द ठीक हो जाता है तो हमें ये मंजूर है, एक क्षण के लिए भी हो जाता है तो हमें मंजूर है। तो वो सरदर्द क्या है, भगवान के सर में दर्द क्यों होता है? छठ ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिसको किसी बात की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, यश की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं, रूप की कमी नहीं, वैराग्य की कमी नहीं, छठ ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, और भगवान के सर में दर्द क्या कारण है? एक ही कारण है, भगवान के सर में दर्द होने का एक ही कारण रहता है कि जो जीव भगवान से अलग हैं, भगवान उनको देख करके उनको पीड़ा होती है सर में कि ये कब वापस मेरे पास आएंगे। यही सर दर्द भगवान का संग करते करते नारद मुनि के पास आ गया, यही सरदर्द, ये सरदर्द भगवान ने अपना नारद मुनि को दे दिया। अब नारद मुनि भी उस सरदर्द को लेकर के घूमते हैं और दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को भगवत धाम भिजवा दिया। और यही सरदर्द महाप्रभु लेकर के आए, ये सरदर्द है ना, लोगों की दशा को देख ना पाना। जीवों की ऐसी दशा को न देख पाना, ये वैष्णव के लिए, भगवान के लिए, साधु के लिए ये सरदर्द है। तो महाप्रभु भी इसी दर्द को लेकर के आए, सरदर्द को लेकर के आए। और एक दिन जब गंगा के तट पर एक ब्राह्मण ने महाप्रभु को भी शाप दिया, हालांकि महाप्रभु भी किसी शाप में आते नहीं, नारद मुनि भी नहीं आते शाप में, नारद मुनि ने उसको सहज स्वीकार कर लिया। नारद मुनि चाहते तो शाप का प्रतिकार कर सकते थे, बदले में कोई शाप दे सकते थे, लेकिन नारद मुनि ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये साधु के लक्षण है। भगवान स्वयं शाप के किसी उसमें नहीं आते, परिवेश में नहीं आते, लेकिन एक ब्राह्मण ने गंगा के तट पर जब श्रीवास ठाकुर के घर में प्रति रात को कीर्तन हुआ करता था, तो पहले तो एक गोपाल चापाल जो एक ब्राह्मण था आया, जिसने श्रीवास के घर के बाहर बहुत सारा कुछ सामग्री ऐसी रख दी थी जिससे ये लगे कि ये काली का पूजन करते हैं, और मदिरा की बोतलें और ये वो सब रख दिया था, और उसको जो है बड़ा कुष्ठ रोग हो गया था, तो ऐसी कथा है चैतन्य चरितमृत में। लेकिन एक ब्राह्मण और जब श्रीवास आंगन में प्रवेश करना चाहता था रात को कीर्तन के लिए, और द्वार बंद थे क्योंकि उसमें सब कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, तो उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया, और अगले दिन गंगा तट पर उसने महाप्रभु को शाप दे डाला। क्या शाप दिया? संसार सुख तुम्हारा है उका विनाशा, शाप सुनी प्रभुर चित्ते है ल उल्लासा। उसने कहा कि तुम्हारे संसार सुख का नाश हो जाए। ब्राह्मण ने किसको कहा? महाप्रभु को। तुम्हारे संसार सुख का नाश हो जाए, और ये शाप सुन करके प्रभु का चित्त जो है वो उल्लास से भर गया। तो जितने भी जिनके भी सर में दर्द है उनको ये शाप अच्छा लगता है। जैसे नारद मुनि को शाप दिया एक स्थान पर नहीं रह सकते, तो ये शाप नहीं, ये वरदान है, क्योंकि उनका सरदर्द कब खत्म होगा? जब वो समस्त पूर्ण ब्रह्मांड में प्रचार करते रहें और सब जीवों को भगवान की ओर मोड़ते रहें, तभी उनके सर का दर्द समाप्त होगा। और उसी सरदर्द को महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु ने ले लिया और हरिदास ठाकुर ने ले लिया। इस सरदर्द को स्वीकार किया सहर्ष, और उसी परंपरा में इस सरदर्द को शिला प्रभुपाद ने स्वीकार किया। इसीलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मैं अपने तरुण शिष्यों के माता पिताओं के द्वारा शापित हूं, और मैं इस स्थान पर नहीं रुक पाता, और अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये शाप मैं भी आगे स्थानांतरित कर दूं। किसको? अपने तरुण शिष्यों को, विशेष रूप से जो सन्यासी हैं। तो प्रभुपाद के जितने सन्यासी हैं, अब वो सरदर्द उन्होंने ले लिया, और उन जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं जो ये सरदर्द लेकर के पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, परिवर्तकाचार्य, हमारा क्या कार्य है? उस सरदर्द को अब हम अपने सर पे ले लें। ये सरदर्द लेना बहुत जरूरी है। अगर सारे दर्दों से छूटना है, संसार के सारे कष्टों से छूटना है, तो हमें यह सरदर्द सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमारे को सबसे पहले शरणागति, गुरु के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति, उसको स्वीकार करना होगा। शरणागति के 6 लक्षण हैं: अनुकूलस्य संकल्पा, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो गोपतृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षट विधा शरणागति। भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना पहला, शरणागति का पहला लक्षण क्या है? भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना है और प्रतिकूल बातों को बहिष्कार करना। और तीसरा, कृष्ण द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास, भगवान हमारी रक्षा करेंगे इसके ऊपर पूर्ण विश्वास, और भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करना चौथा, और पांचवा पूर्ण आत्मसमर्पण, भगवान के प्रति गुरु के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण और दीनता ह्यूमिलिटी। ये छह लक्षण किसके हैं? शरणागति के। ये हमारे को इन लक्षणों का विकास करना होगा। कंठस्थ नहीं करना, क्या करना है? हृदयस्थ करना, हृदय में बिठाना है, एक एक बात पर विचार करना है अकेले में बैठ के। और जब हम शरणागति करेंगे तब फिर हमको भक्ति करनी है, और भक्ति के भी छह सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? उत्साहन निश्चया धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत संगत्यागास सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। संग त्यागास सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो पहला लक्षण है शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में, पहला लक्षण है उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना, उत्साह निश्चयात्। और फिर तीसरा है धैर्यात्, उत्साह बनाए रखना है निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है, और धैर्यता को अपनाना है, धैर्यवान बनना है, और नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना है। नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करने का मतलब है यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के नाम का कीर्तन, श्रवण और कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और पांचवा, अभक्तों की संगति को छोड़ देना है, अभक्तों से संग नहीं करना, और पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना है। ये छह लक्षण हो गए शुद्ध भक्ति संपन्न करने के, छह लक्षण हो गए शरणागति के। अब छह लक्षण हैं कि जब भक्ति करेंगे तो भक्तों में आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, उसके भी छह लक्षण हैं। वो छह लक्षण भी हमें स्वीकार करने चाहिए। ददाति प्रति घृणाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड विधम प्रीति लक्षणम। भक्तों को दान में कभी कभी कुछ उपहार देना, कोई महंगा उपहार देने की आवश्यकता नहीं, एक 10 रुपए का गोपी चंदन भी दे सकते हो, हरी बोल। लेकिन उससे क्या दिखता है? प्रेम दिखता है, प्रेम का भाव दिखता है, कोई महंगी वस्तु देने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही आपकी यथा योग्य मिनिमम एक गोपी चंदन भी आप किसी को प्रेम से अगर देंगे तो आपका क्या होगा? प्रेम बढ़ जाएगा। दान में उपहार देना, बदले में स्वीकार करना, कुछ उपहार स्वीकार करना, मन की बात को प्रकट कर देना, जहां आपका विश्वास जमता है मन की बात को प्रकट कर देना, और गोपनीय ढंग से पूछना, वो बात गोपनीय होनी चाहिए। पांचवा, प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद किसी को अर्पित करना। तो भक्तों में आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के ये जो हैं लक्षण हैं, तो इसके लिए ये सारी भक्ति सिखाने के लिए हमारे पास स्वयं महाप्रभु आए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपया अम्बोधिर यस्तहम प्रपद्ये। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें वास्तविक ज्ञान अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत के विकास में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी, भक्ति का आश्रय लेना और जो परंपरा से चला आ रहा सरदर्द है उसको अपने सर में लेना, यही हमारा कर्तव्य है और हमारा जीवन इससे सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिला प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदी। कोई कमेंट और कमेंट्री अगर किसी का क्वेश्चन है तो दो चार मिनट हैं हमारे पास, ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।